Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram shaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jaya mudire nashta praishu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki Sarvashastravdi Piyusha Sarvavedaika Satfala Sarvasiddhanta Ratnadhya Sarvalokaika Drikpada Sarvabhagavata Prana Srimadbhagavata Prabho Kali Dhvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita. Grantha Srimad Bhagavatam. Tritiya Skanda. अध्याय 24 का शुभारंभ आज सुनूंगा. अध्याय का शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य. श्लोक संख्या 1 और 2, दोनों श्लोकों की हम पुनरावृत्ति करेंगे. प्रथम श्लोक में तात्पर्य नहीं है, द्वितीय में है, अतः दोनों को लिया जाएगा. मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनामेवम् निर्वेदवादिनीमेवम्
मनोर्दुहितरं मुनि मनोर्दुहितरं मुनि दयालु शालिनी महा दयालु शालिनी महा शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच प्रत्यानि आत्मानं प्रत्यनिन्दिते संपत्स्यते अदूरा संपत्स्यते मैत्रेयवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनि दयालु शालिनी महा शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रित्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्त्यक्षरो गर्भम् अदूरा संप्रपत्स्यते मनोर्दुहितरं मुनि दयालु शालिनी मा शुक्लाभ्यावृतं स्मरन् ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रित्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते अधूरा संप्रपश्यते। मैत्रेय उवा मैत्रेयः, परम साधु मैत्रेय ने वाच कहा, निर्वेदवादिनिम् वैराग्य से युक्त बातें करने वाली, एवं इस प्रकार मनो स्वयंभू मनो की दुहितरम पुत्र को मुनि कर्दम मुनि ने दयालु शालिनी प्रशंसा की पात्र आह कहा, शुक्ल भगवान विष्णु द्वारा अभिव्याहृतम कथित स्मरण करते हुए। अगले इसका शब्दार्थ पढ़े, ऋषि उवाच, ऋषि ने कहा, माखिदह निराश मत हो राजपुत्री, हे राजकुमारी, इत्थम इस प्रकार आत्मानम अपने प्रति अनिंदिते, हे प्रशंसनीय देवती, भगवान श्री भगवान ते तुम्हारे अक्षर अविनाशी गर्भम गर्भ में अधूरा देर किए बिना शीघ्र संप्रपत्स्यते प्रवेश करेंगे। अनुवाद तात्पर्य, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचरणालिन भक्तिदान स्वामी शिल रूपाद और शिल रूपाद की दोनों अनुवाद साथ में हमने भगवान विष्णु के वचन का मैत्रेय मुनि ने कहा, नहीं आपको सुनिए, भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्य पूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनो की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा, मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो, अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर कि वह कितनी अभागी है, दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके शरीर से अवतार रूप में प्रकट होने जा रहे थे। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शन्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछाकल्पगर्वश्य कृपा सिंधुव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचा लम्बङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। असाधु साधुनादाय नातीनीचो ततारक हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः। मैत्री उवाच निर्वेदवादिनीम् एवं मनोदुहितरं मुनि दयालुशालिनी महाशुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। भगवान कपिल देव क्या अत्यंत प्रसिद्ध उपाख्यान है श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद में, जिसमें भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश दिए हैं। और श्रीमद् भागवत में प्रमुख रूप से कहा जाए तो स्वयं भगवान जो उपदेश दिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए भगवद गीता है, जैसे स्वयं भगवान के मुख से जो उपदेश निकले हैं, तो भागवत में दो उपदेश अति प्रसिद्ध है या अत्यंत विस्तृत कह सकते हैं। अन्य स्थानों पर भगवान कहे है, वैष्णव को कहे, परंतु संक्षिप्त में या सूत्र रूप में, परंतु विस्तार से भगवान जो अपने भक्त को उपदेश दिए तो उसमें प्रथम आता है एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जो उपदेश दिए वह उद्धव गीता कहलाता है। उसके उपरांत दूसरा कोई बहुत बड़ा यदि भाग है श्रीमद् भागवत में भगवत उपदेश का, वह ये कपिल उपाख्यान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पता नहीं कुछ भक्त एकदम सहज समाधि लग जाती है तुरंत, जैसे आध्यात्मिक शब्द केवल कर्ण को स्पर्श करे। आपने सुना ना अभी कुछ दिन, श्रुत्वा भुवन सुंदरम चुणवताम ते निर्विश्य हर तो अंग ताप, मतलब ताप तो ही ऐसे गर्मी का, परंतु उस ताप में भी सेम है हर तो अंग ताप। हम कई लक्ष्य प्रमाण है कि जैसे ही शब्द कान को स्पर्श करते निर्विश्य प्रवेश करते नितराम आविश्य कर्ण विवरई कान के छिद्र में जैसे प्रवेश किए, वैसे ही तुरंत निद्रा देवी का आगमन हो जाता है। तो यहां पर हम भगवान कपिल उपाख्यान का शुभारंभ के पूर्व ये दो अध्याय हैं। और यदि श्रीमद् भागवत में देखा जाए, एक जब देख रहा था तेईसवा अध्याय कश्यप कपिलोपाख्यान ही लिखा गया है, महापुराणे पारमहंसम संहिता तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्यान त्रयोविंश अध्याय, और फिर महापुराणे पारमहंसम संहितायां तृतीय स्कंदे कापिले चतुर्विंशोध्याय। परंतु श्रील प्रभुपाद यहां जो दो अध्याय दिए है, और श्रील प्रभुपाद की बहुत विशेषता, श्रील प्रभुपाद एक विशिष्ट भाव को प्रदर्शित करते थे जब अध्याय को शीर्षक भी दिया जाता था। जिसके पूर्व का अध्याय था देवहूति का शोक। इसके पूर्व भी जब कथा में हम चर्चा किए, देखा जाए तो पूरा अध्याय, अध्याय का प्रारंभिक भाग देवहूति अति श्रद्धा के साथ, अति दीन भाव के साथ जब कर्दमुनि की सेवा की, उसका वर्णन किया गया। अंततः फिर उनके गृहस्थ जीवन का, कर्दमुनि और देवहूति के ऐश्वर्य का वर्णन किया है। इस प्रकार का ऐश्वर्य देवहूति को प्राप्त हुआ, जिसके विषय में आचार्य कहते कि ऐसा तो इंद्र देव की पत्नी शची भी कल्पना नहीं कर सकती। जो स्वर्ग के राजा है इंद्र, उनकी धर्मपत्नी शची को भी इतना ऐश्वर्य प्राप्त नहीं था जितना ऐश्वर्य माता देवहूति को प्राप्त हुआ। और इतना ऐश्वर्य प्राप्त होने के उपरांत, इतना भोग विलास प्राप्त होने के उपरांत, अंततः वहां पर वर्णन किया, जिन्हें बहुत अधिक निद्रा आई थोड़ा खड़े भी हो सकते हैं, पता नहीं क्यों, कुछ भक्त जो संघर्ष करते रहते हैं परंतु डुलकियां खाते रहते हैं, उठेंगे नहीं ऐसा है, क्योंकि वह तो अहम रहता है, वो अहम को चोट पहुंच जाती है। दी तो अभी यहां पर विषय इधर आने वाला था। माता देवहूति यहां पर विलाप करती है, और उसके उपरांत अब अगला अध्याय जहां पर भगवान कपिल प्रकट होने, तो उसके पूर्व कर्दमुनि का वैराग्य, कर्दमुनि ग्रह त्याग किए है। तो माता का विलाप और पिता का वैराग्य, और इन दोनों का जब मिश्रण होता है तो भगवान कपिल प्रकट होते हैं, या किनके यहां पर भगवान अवतरित होते हैं, क्योंकि यहां पर शब्द आया था भगवांस्ते अक्षरो गर्भम अधूरात, अधूरात मतलब अति शीघ्र भगवान संप्रपश्यते, भगवान तुम्हारे गर्भ में अति शीघ्र प्रवेश करेंगे, या तो भगवान अवतरित होंगे बहुत शीघ्र। तो उसके पूर्व वही है माता पिता जिनके भगवान अवतरित हो रहे हैं, उनके गुणों को चिंतन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम भी कृष्ण भावना का अभ्यास इसी प्रयोजन से करते हैं, कम से कम प्रारंभ तो इसी प्रयोजन से करते हैं कि हमें भी अपने जीवन में भगवत प्राप्ति हो, हमारे जीवन में भगवान अवतरित हो। हालांकि समस्या ये रहती है, कल एक कथा सुना उसमें हम कह रहे थे कि बस दो ही कार्य आवश्यक है, दो बातों को मैं अच्छी तरह से समझना आवश्यक है, दो बातें समझ में आ जाए तो कहते हैं कि साध्य साधन तत्व निरूपण, कहते हैं कि साध्य अत्यंत स्पष्ट हो जाए, साधन स्पष्ट हो जाए, तो फिर बाकी कोई आवश्यक नहीं है। कि साध्य असाध्य अर्थात लक्ष्य क्या है यह स्पष्ट हो, और साधन क्या है। अधिकांश भक्त जो भक्ति अभ्यास करते हैं उनकी भक्ति तुरंत फलीभूत न होने का मूल कारण यही है कि साध्य स्पष्ट नहीं होता है, किस प्रयोजन से हम कार्य कर रहे हैं और करना क्या है वही स्पष्ट नहीं है। तो यहां पर भगवान कपिल देव और माता देवहूति के जीवन में, जब क्षमा गई कर्दमुनि और माता देवहूति के जीवन में जब भगवान कपिल देव प्रकट हुए, उसके पूर्व की यह जिसे कह सकते हैं पार्श्व भूमि, जैसे संसार में एक अभिनेता जब भूमिका निभाता है तो उसके पहले एक मंच बनाया जाता है, जिस मंच के ऊपर अभिनेता खड़ा होता है और फिर वह अभिनय प्रदर्शित करता है। तो यह पूर्व दो अध्याय परंतु वह पार्श्व भूमि है जिस पर भगवान का अवतरण होने वाला है। तो सर्वप्रथम भगवान कपिल देव किने चुने यह अति आवश्यक है, और उनमें भी भगवान किने उपदेश दे रहे, जैसे तो भगवान श्री कृष्ण एकादश कन्म उद्धव को उपदेश दिया, वैसे यहां पर भगवान माता देवहूति को उपदेश दिया। तो कोई सर्वसाधारण जीव नहीं हो सकता है जिन्हें भगवान चुन रहे हैं, जिन्हें भगवान स्वीकार किए अपने जीवन में, तो वह जैसे भक्तन ठाकुर का कौन सा समझे, तो वह निज जन, वहां शब्द आता है, भगवान अपने किसी निजी भक्त को ही चुनते हैं, अपने साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर ठीक है, मैं अन्वय भी रखा था सामने मुझे, हमारे शची प्राण प्रभु आदेश दिए थे प्रभु जी अन्वय का भी प्रयोग करें। मैत्री वाचन निर्वेद वादिनिम एवं मनोदुहितरम मुनि दयालु शालिनी माह शुक्लाभिव्याहृतम स्मरण। मैत्री मुनि ने कहा, तो वहां पर पूर्व भगवान कबीर कर्द मुनि और देवती का संवाद चल रहा था और दोनों के संवाद में माता देवहूति आई। माता देवहूति ने बहुत सेवा की, सेवा के फल स्वरूप कर्द मुनि प्रसन्न हुए। कर्द मुनि प्रसन्न होकर अपने प्रसन्नता को व्यक्त किए, मैं अति प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे समर्पण से। और इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि मैं तुष्ट हो, मैं एकदम संतुष्ट हो चुका हूं पूर्ण रूपेण तुम्हारे इस भाव को देखकर। और मैं कुछ तुम्हें विशिष्ट कुछ देना चाहता हूं। अंततः फिर माता देवहूति जो गृहस्थ आश्रम के लिए याचना की, तो फिर उन्होंने ऐश्वर्य को प्रकट किया और कई वर्षों तक वहां फिर गृहस्थ जीवन का यापन किया। और तब अंततः यहां पर जो वर्णित है कि माता देवहूति अंतिम सात श्लोक, सात श्लोकों में बहुत सुंदर भाव को व्यक्त की है माता देवहूति, और उसी भाव को इस अध्याय के शुभारंभ में मैत्री मुनि कह रहे। निर्वेदवादिनीम ये शब्द वहां पर आया, निर्वेदवादिनीम एवं, तो अन्वय के अनुसार हम कहते हैं दयालु मुनि। दयालु मतलब ये दयालुता, यह विशेषण कर्दम मुनि के लिए दिया गया। दयालु मुनि एवं मतलब दयालु मुनि ने इस प्रकार एवं निर्वेदवादिनीम शालिनी मनोदुहितरम शुक्ल अभिव्याहृतम स्मरण आह, इस तरह से अन्वय किया गया है। मतलब ये शब्द को यदि वाक्य रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, दयालु मुनिम मतलब अत्यंत कृपा से युक्त, अत्यंत दया से जिनका हृदय भर चुका है ऐसे दया से युक्त कर्दम मुनि ने एवं इस प्रकार। इस प्रकार मतलब एवं शब्द जब आप सुन रहे, इस प्रकार मतलब पूर्व अध्याय आपको स्मरण करना पड़ेगा। इस प्रकार मतलब पिछला जो कुछ उन्होंने सुना, एवं इस प्रकार से निर्वेद वादिनिम शालिनिम मनोदुहितरम, निर्वेद वादिनिम अर्थात अत्यंत वैराग्य से युक्त वचनों को कहने वाली अतिशाल शालिनी, शालिनी मतलब अत्यंत प्रशंसनीय मनोदुहितरम मनो महाराज की पुत्री से इस प्रकार सुनकर क्या हुआ, शुक्ल अभिव्याहृतम स्मरण। शुक्ल अर्थात भगवान, अभिव्याहृतम भगवान ने कुछ वचन कहे थे, स्मरण उनका स्मरण करते हुए आह कहा, इस तरह से अन्वय है। पता नहीं कुछ वक्त को समझ में आएगा, कुछ वक्त के ऊपर से चलाई हम, फिर भी नुकसान नहीं है समझ में। तो एक बार पुनः अनुवाद किया जाए, दयालु कर्दम मुनि ने इस प्रकार से अत्यंत वैराग्य से युक्त वचनों को अत्यंत प्रशंसनीय स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के इन वचनों को सुनकर भगवान के वचनों का उन्हें स्मरण हुआ और वे इस प्रकार बोलना प्रारंभ किए। इस तरह से यहां पर शब्द दिया गया है। तुम एक पहले शब्द को भी पढ़ा तो उसी पर काफी विचार कर रहा, निर्वेद वेदम अर्थात ऐसे वैदिक ग्रंथ होता है, तो शास्त्र में प्रमुख रूप से वैदिक ग्रंथों को दो भाग में विभाजित किया गया है, जिसे ऐसे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहते हैं। मतलब वैदिक शास्त्र विषय से दो बातों को वर्णन करते हैं। एक तो भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन किया जाता है, भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है, आध्यात्मिक जगत का अप्राकृत जगत का वर्णन करते हैं, और वही वैदिक ग्रंथ प्राकृत जगत इस संसार का, इस संसार के कार्यों का, संसार के व्यवहार का भी वर्णन करता है। तो जो भाग इस संसार के प्राकृत जगत का वर्णन करें उसको विभाजित किया गया धर्म अर्थ काम में, और जो भगवान के नाम रूप गुण लीला भगवत महिमा का भगवत धाम का वर्णन करे वह मोक्ष में आता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष हम जो कहते हैं, तो अधिकांश भाग ये धर्म अर्थ काम से भरा हुआ है, मतलब संसार का व्यवहार, संसार के क्रियाओं को करते हुए उसको कर कैसे करना चाहिए, धर्म युक्त होकर कैसे करना चाहिए, भगवान से जोड़कर कैसे करना चाहिए, मतलब संसार में जो भोग है ये संसार की क्रिया है वो करनी है, परंतु वो वैदिक शास्त्र के अनुसार कैसी करनी चाहिए। जैसे भगवान भी श्री कृष्ण भगवत गीता में थे, धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम उसमें भरतर्षभ, कि वैदिक धर्म के अनुकूल काम जीवन वह मेरी ही विभूति है। भगवान अपनी विभूति के रूप में काम जीवन को स्वीकार किए हैं। जब धर्म के अनुसार धर्म सम्मत रूप से जब किया जाता है तो समस्त वैदिक शास्त्र में प्रधान रूप से इनको ही अधिक बताया गया कि किस तरह से भगवान से जोड़कर भी संसार के कार्य को किया जा सकता है, भगवान संसार का त्याग को प्रोत्साहित नहीं किया गया कि हर कार्य को हम भगवान से जोड़ सकते हैं। आप अगर अन्न लेना चाहते तो भगवान को अर्पित करो, प्रसाद हो जाता है। आप गृहस्थ जिनको स्वीकार करते भगवान से जोड़ दो तो वह भी कृष्ण भावना अमृत हो जाता है। समस्त इस संसार के भोगों को भगवत भावना युक्त तो होकर जब स्वीकार करते हैं तो उसका वर्णन पूर्व मीमांसा में किया गया है। परंतु अंततः इस संसार में भगवत भावना से युक्त तो होकर भी संसार के भोग को स्वीकार किया जाए, भोग का एक स्वभाव है कि भोग भगवत विस्मरण को लाता ही है। इस संसार के भोग है वह कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो वह भगवान से हमारे चित्त को अलग करता है। तब अंततः यानी शब्दों में जैसे प्रहलाद महाराज के शब्द हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम, जो गृहस्थ जीवन है इस संसार का भोगमय जीवन है उसके लिए एक शब्द है आत्मपातम, मतलब आत्मा का विनाश करता है या आत्मा की भावना को नीचे गिराता है। कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो, परंतु जैसे एक सहज अनुभव मैं भी जब पढ़ा इस शब्द पर विचार कर रहा था, एक सहज अनुभव है, हम प्रातः काल उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं, भगवान का मंगल दर्शन किया जाता है, मंगला दर्शन करते हैं, और बहुत संघर्ष के साथ भले क्यों ना हो परंतु नाम जब भी करते हैं एकदम गिरते पड़ते हुए उठते बैठते हैं, और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, संकीर्तन में भाग लेते हैं, नृत्य करते हैं, भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये सभी आप देखेंगे आपकी चेतना एकदम ऊपर 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 लेके जाती है। एकदम से 9 बजे तक आपकी चेतना एकदम पीक पर है, आपकी भावना जो है भगवत भावना, यदि आप यहाँ समस्त कार्यों को अत्यंत सतर्कता पूर्वक करते हैं आपकी भावना चेतना बहुत ऊपर जाती है, परंतु जैसे उसके उपरांत हम दो क्रियाओं को जब स्वीकार करते हैं आहार निद्रा, दिन में ये दो क्रियाएं जब की जाती है, दो क्रियाएं पूर्ण जो आपकी चेतना ऊपर तक आई थी उसको पूरा नीचे तक लेकर आती है पुनः। इसलिए एक साधक का हम मैं श्रवण कर रहा था, क्योंकि साधक के लिए सबसे बड़ी हानि कौन सी है, तो कहते कि दिन में सोना ये साधना को शून्य करने का विशेष एक क्रिया है। आप जितने साधना करते साधना के फल को यदि शून्य करना है तो एक क्रिया करनी चाहिए, कहते दिन में सो जाओ। मुझे ये वाक्य इतना एकदम हृदय को स्पर्श कर गया, मतलब कुछ भी हो जिसको साधना को बनाए रखना है उसने एक क्रिया करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए दिन में निद्रा को स्वीकार न करें, भले उसके आंख आग जलने लगे कि शारीरिक अस्वस्थता हो और कोई शरीर के अंगों में कष्ट भी क्यों ना हो, बॉडी पेन कर रहा है कई बार, कुछ भी हो तो बोले फिर भी आंखों पर पानी डालते रहे, बोलते प्रभु जी बर्फ लगाइए सर पर, बर्फ लगाइए, कुछ भी कीजिए परंतु निद्रा को स्वीकार मत करो। निद्रा दिन में स्वीकार कर ली अर्थात मतलब भजन उस दिन जितना किया था वो भजन तुरंत नष्ट हो जाता है। देखा आप तुरंत जीरो पे आ जाते हैं जैसे निद्रा करो, उसके साथ फिर आहार भी, अब आहार चलो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, कहते कहते आहार प्रसाद लेते हो परंतु प्रसाद को भी उस भावना से लिया जाए, हमारी भावना उतनी शुद्ध नहीं रहती है अधिकांशता। तो कहते हैं पूरा दिन यदि आप निद्रा अगर नहीं स्वीकार करते तो क्या होगा, जैसे सूर्यास्त होने लगता है आपका शरीर थकने लगता है आप देखेंगे, और दूसरा भी परिणाम होगा कि बहुत जल्दी आपको नींद आएंगी। जैसे हमारे कुछ भक्त हम देखे जो पूरा दिन अगर सोए ना तो जैसे आठ बजने लगे, आठ साढ़े आठ बजने लगते वैसे ही निद्रा का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, फिर साढ़े आठ के बाद अपने आंख बंद होने लगती है। हमारे नागपुर में हम एक वक्त जानते अद्वैत आचार्य रो साढ़े आठ हुए तो उनकी आंखें आप देखिए साढ़े आठ के बाद कैसे होती है, जैसे आप कभी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आंखों को देखते हैं एकदम चलो वो उससे वो भाव में नहीं रहते परंतु निद्रा के प्रभाव से उनकी आंखें भी बंद होने लगती है और तुरंत नींद आएंगी, मतलब जो सही समय उसी समय पर नींद आएंगी और वह नींद बहुत अधिक गहरी रहती है कहा जाता है। आप दिन में यदि निद्रा को स्वीकार करते हैं आप देखेंगे रात की नींद आपकी गहरी नहीं होगी, और रात की नींद गहरी यदि नहीं हो तो साधना अगले दिन की प्रभावित रहेंगी उससे। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि साधना में अगर फल को प्राप्त करना है तो बोले कि दिन की निद्रा को त्याग दे, वो कह रहे थे। मैं प्रयास करते रहता हूँ परंतु हमारे इस तरह का जिसको श्री प्रभुपाद भागवत प्रथम स्कंद में कहते हैं कि कलयुग का दोष क्या है तो कहते असंतुलित आहार और निद्रा, इररेगुलेटेड ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, सब बात कहते हैं यहाँ पर, यह बहुत बड़ा दोष है कलयुग का। तो मैं इसलिए यहाँ पर इस शब्द पर विचार कर रहा था कि संसार में जैसे आप भोग को स्वीकार करते हैं भले आप कहें कि हाँ भगवत सेवा के लिए कर रहे हैं परंतु जो उसे स्वीकार किया जाता है तो उसका स्वभाव रहता है कि तुरंत आत्मा के भावना चेतना को नीचे लेके आता है। अप्रसाद में भी यदि बहुत अधिक सतर्क न रहे, सतर्क भावना से न लिया जाए, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु से कहते एक दिन शांति पूरे प्रभु श्री अद्वैत तेरे घरे दो ही प्रभु भोजन ने बोशील, श्री चैतन्य नित्यानंद जब अद्वैत आचार्य के निवास स्थान शांति में जब भोजन के लिए बैठे तो चैतन्य महाप्रभु की क्या भावना है और हमारी भावना क्या रहती है, चपाती मिली कि नहीं, सब्जी मिली कि नहीं, सब्जी में नमक नहीं है नमक लेकर आओ, फिर ये बहुत अधिक। तो प्रसाद में पहली बात तुरंत आपका चेतना नष्ट हो जाती है यदि आप प्रसाद के समय बोलना शुरू करते तो। आयुर्वेद के अनुसार वैसे देखा जाए तो आप यदि बोलते हैं अन्न को ग्रहण करते समय तो क्या कहते हो हवा भी मुख में प्रवेश करती है ना, तो जितना पर्याप्त तो अन्न होना चाहिए वैसा अन्न लेते नहीं है और दूसरा वो स्वास्थ्य के अनुकूल भी नहीं है बोलना। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जैसे आप बोलना प्रारंभ करते हैं तो बोलने से तुरंत आप तुरंत रजोगुण में आते, पहली बात होती है सतोगुण से आप रजोगुण में आ जाते। इसलिए कई भक्त इस तरह संकल्प भी रखते हैं कि न बोले परंतु केवल सतोगुण, शुद्ध सत्व क्या है दो प्रभु भोजन बशीलो शाक करी आस्वादन प्रभु थे भक्त गण हे शाक कृष्ण आस्वादीलो, शाक करी जैसे वो भोजन को देखे श्री चैतन्य महाप्रभु तो कहते साक्षात ये भगवान की कृपा है, प्रसाद हम कहते हैं ना भगवत कृपा है। शाक करी आस्वादन प्रभु बोले भक्त गण, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब्जी को ले रहे हैं, हम भी सब्जी को लेते पता नहीं आज क्या सब्जी है, प्रभु बोले भक्त गण, तुरंत चैतन्य महाप्रभु भक्तों से कहने लगे ए शाक कृष्ण आस्वादी लो। एक भक्त में अन्यत्र चर्चा कर रहा था, अगर आप शुद्ध प्रसाद लेते हैं तो बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, शुद्ध प्रसाद यदि आप लेंगे, कल एक वाक्य सुना निगेटिव प्रसाद और शुद्ध प्रसाद, शुद्ध प्रसाद यदि हो और आपकी भावना शुद्ध हो तो आप अन्न को स्पर्श करेंगे तो आपकी आंखों से अश्रु निकलेंगे। आप प्रसाद लेते समय आपकी आंखें भर आएंगी, ये समझ में नहीं हमको ये कौन सी लेवल की बात चल रही है। परंतु इस तरह की भावना रहती है जब आप का चित्त यदि पवित्र हो, चित्त पवित्र के साथ भगवत कृपा की भावना से यदि अन्न को आप स्पर्श करते, शाक करी आस्वादन प्रभु बोले भक्तगण ए शाक कृष्ण आस्वादिलो, यह शाक जो है साक्षात भगवान की जीवा को रुक्मिणी महारानी द्वारकाधीश के जीवा का स्पर्श किया शाक ने, और भगवान कितनी बड़ी कृपा किए कि इस प्रसाद के रूप में साक्षात भगवान मेरे जीवन में प्रकट हुए। शाक करी आस्वादन प्रभु बोले भक्तगण ए शाक कृष्ण आस्वादिलो, हिनो शाक आस्वादने कृष्ण प्रेमे ऐसे मने सही प्रेमे करो भोजन, हेनो शाक आस्वादन, इस शाक का आस्वादन करने से कृष्ण प्रेम शाक प्रसाद आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। हम तो डेली प्रसाद ले रहे, कुछ होता ही नहीं है। तो कल एक वाक्य अच्छा सुना, लेकिन निगेटिव प्रसाद के साथ है, आप प्रसाद लो और पहली चीज आती है आपने रजोगुण आता है प्रसाद लेते समय, जो प्रसाद यदि पवित्र न हो उसका दो परिणाम होंगे, लेते समय आप में रजोगुण आता है और लेने के उपरांत आप में तमोगुण आता है। मतलब प्रसाद लेते बड़ा सो गए मतलब समझना नेगेटिव है, उसका नेगेटिव प्रभाव हो रहा है। प्रसाद तुरंत जो है आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है, मतलब भावना बहुत तीव्र होती है प्रसाद के बाद। अब प्रसाद लेते बराबर यदि आपके मन में ये भावना आ जाए कि अब मैं तुरंत भगवान नाम लेना चाहिए, कुछ भगवान का स्मरण आपका यदि तीव्र हो रहा है मतलब प्रसाद शुद्ध है। अब इस तरह का चेक करने लगेंगे तो मैं ये इसलिए स्मरण किया, पिछले सप्ताह मैं यवतमाल में था लगभग 4 दिन तक, और यह अनुभव भी मैं एक भक्त से कह रहा था कि वहां पर 2 दिन संध्या को मैं प्रसाद लिया जो परम पूज्य रूप रघुनाथ महाराज बनाए थे, रूप रघुनाथ महाराज के हाथ की खिचड़ी थी। हालांकि महाराज थोड़ा कभी शायद तीखा खाते हैं क्योंकि एकदम मुझे तीखा लग गया, तो जैसा भी हो महाराज जी बनाए थे। और फिर वो प्रसाद लेने के उपरांत जो अनुभव रहे वो थोड़े अलग थे, जो नॉर्मल प्रसाद में कभी नहीं आए मुझे। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत विचार कर रहा था ऐसा हुआ क्यों, प्रसाद लेते समय कुछ अलग अनुभव आ रहे थे और उसके उपरांत जब मैं अलग अनुभव आए। हालांकि यवतमाल में देखा जाए तो प्रत्यक्ष विग्रह भी नहीं है, हाँ तो राधा गोपीनाथ का छवि है, छाला की छवि और विग्रह में अंतर नहीं होता है, परंतु कोई डीटीज नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा भव्य मंदिर भी नहीं है, जैसे रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर है, परंतु अनुभव कुछ अलग थे जो प्रतिदिन अनुभव नहीं आते थे। तो भक्त से मैं जब चर्चा किया तो बोले कि तुरंत देख लिया कि जो शुद्ध यदि जिस प्रमाण में जितना अधिक शुद्ध रहे तो उसके फल तुरंत प्रकट होते हैं। तो पहला होता है कि अन्न ग्रहण करते समय रजोगुण नहीं रहेगा और अन्न लेने के उपरांत तमोगुण नहीं रहेगा। जैसे हम कार्तिकीय समय मुझे मधुमति गुरु अपना अनुभव बतला रहे थे कि प्रसाद लेने के उपरांत बिल्कुल आलस नहीं आ रहा है और अलग वो भी अधिक नाम जबकि उनकी इच्छा हो रही, परंतु सर्वसाधारण तौर पर ये शब्द निर्वेद के ऊपर बोल रहा था, निर्वेद पर विचार कर रहा था। तो वैदिक ग्रंथ में भोग का वर्णन किया गया है, हम 2 ही शब्दों को मैं भी विचार किया, आहार और निद्रा, परंतु यह जितने भी क्रियाएं है, क्रिया क्या करती है, आत्मा का हनन करती है, आत्मा की भावना चेतना को नीचे लेकर आती है। तो इसलिए अधिकांश वैदिक ग्रंथ इस पुरुषार्थ को धर्म अर्थ काम का ही वर्णन करते हैं, परंतु अंततः इससे जब जीव के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य का प्रथम लक्षण होता है कि उसमें बहुत अनुताप होता है, ग्लानि होती है, धिक्कार है मेरे जीवन पर, हरि हरि विफले जनम गोइन है कि गोनाइन यह पूर्व पार्श्वभूमि में